लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे रोगियों की प्रेरिताई हेतु प्रार्थना करते हैं। हमारी याचना है कि रोगियों को अंतमलन देने वाला संस्कार उनके लिए, उनके परिवारों के प्रिय लोगों के लिए तथा सबके लिए ईश्वर की शक्ति, करुणा और आशा का एक दृश्यमान संकेत बन जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, आत्म सम्मान मानवीय जीवन की वह परिस्थिति है जहाँ व्यक्ति अपने विवेक में उन चीजों का अनुपालन करता है जो केवल उसके लिए नहीं बल्कि सारी मानवता के लिए हितकारी होते हैं। हम इसे व्यक्ति में और व्यक्ति की एक प्रतिष्ठा स्वरूप पाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह अपने न्यायोचित व्यवहार में बिना किसी दबाव या चिंता में सही और गलत के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए अपने लिए उस पक्ष का चुनाव करता है जो नैतिक रूप में सबों के लिए एक मिसाल बनती है। किसी भी व्यक्ति के आत्म सम्मान की झलक हमें सदैव उसके बातों, व्यवहार, कुशलता और कार्य करने के तौर तरीकों में देखने को मिलती है, जो स्वतः ही हमें जीवन के प्रति उसके निष्ठा और सारी मानवता के प्रति उसके निष्ठा में प्रेम को अभिव्यक्त करता है। श्रोताओं, वर्ष के 14वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार में हम आत्म सम्मान की बात को मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त में पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए यीशु ख्रिस्त के जीवन और उनके मनोभावों से अपने को संयुक्त करें, जिसका अनुभव वे अपने लोगों से दुत्कारी जाने पर करते हैं। अपनों के द्वारा नकारात्मक टीका टिप्पणी किया जाना हम में किस तरह के मनोभाव उत्पन्न करते हैं? अपने लोगों के द्वारा और अपनों के बीच निंदा शिकायत किए जाने पर हमारी प्रतिक्रिया किस रूप में व्यक्त होती है? क्या हम अपने को उन परिस्थितियों में सहजता से प्रस्तुत करते या हम अपने चोटिल होने पर दूसरों को चोट पहुंचाने और घायल करने के अवसर ढूंढते हैं?
ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पढ़कर कहते थे, यह सब इसे कहाँ से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? जो महान चमत्कार यह दिखाता है वे क्या हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं है? मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता, वह वहाँ कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें उस शक्ति से विभूषित करे जिसके द्वारा हम अपने जीवन की परिस्थितियों में, विशेषकर हमारी निंदा, शिकायत और अस्वीकार किए जाने की घड़ी में मजबूत और सबल बने रहें तथा निराश और हताश हुए बिना अपने कार्यों को निरंतर करते जा सकें। श्रोताओं, नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें नबी को आत्मा से पोषित इसराइली लोगों के बीच भेजे जाने की बात कहता है, ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के बीच अपने नबी को भेजते हैं जो हठ धर्मी हो गए हैं, जिससे वे ईश्वर के वचनों को घोषित कर सकें। यहाँ हम ईश्वर के प्रेममय मनोभावों को पाते हैं। याहवे चुनी हुई इसराइली प्रजा के विरोध करने और अपना परित्याग करने पर भी अपनी सत्य प्रतिज्ञता में बने रहती और नबी एजेकियल को उनके पास अपने कार्यों के लिए भेजते हैं। श्रोताओं, मानवीय संदर्भ में हम इसे संतानों के कुपूत होने पर भी माता पिता का उनके प्रति प्रेम में बने रहने को पाते हैं, क्योंकि माता पिता अपने संतानों से प्रेम करते हैं। उनके भटक जाने पर भी वे उनके वापस आने की आस लगाए रहते हैं। इसके लिए वे विभिन्न लोगों के द्वारा अपने कार्यों को निरंतर अपने संतानों के लिए करते हैं, जैसे कि संतानों की चिंता में उनके कुशल मंगल का पता लगाना, आर्थिक तंगी की स्थिति में होने पर उन्हें गुप्त रूप में एक वित्तीय सहायता प्रदान करना और साथ ही उनमें सुधार की आशा लिए ईश्वर से दया की याचना करना। ईश्वर अपने लोगों के संग भी ठीक ऐसा ही करते हैं। वे जानते हैं कि उनका हृदय उनके प्रति कठोर हो गया है और वे नबी की बातों को अस्वीकार करेंगे। इसके बावजूद वे इसी आशय में उन्हें उनके पास भेजते हैं कि कम से कम उन्हें इस बात की अनुभूति हो कि उनके बीच एक नबी मौजूद है। श्रोताओं, ईश्वर हमारे जीवन के बुरे और पापमय कार्यों के कारण हमारा परित्याग कभी नहीं करते हैं, बल्कि वे धैर्य में बने रहते और कई लोगों और घटनाओं के द्वारा हमें अपने प्रेम का एहसास कराते हैं, यही आशा में कि हम उनकी ओर पुनः लौट आएं। इसके साथ ही ईश्वर हमें एक नबी की भांति दूसरों के लिए भेजते हैं, जिससे हम दूसरों के लिए ईश्वरीय उपस्थिति का कारण बन सकें और वे हमें देखकर ईश्वर की ज्योतिर्मय जीवन में वापस आ सकें। श्रोताओं, वहीं कुरुंथियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें हमारे जीवन की मुसीबतों, कठिनाइयों, तकलीफों और चोटिल परिस्थितियों को देखने और समझने में मदद करता है। ईश्वर ने हमें बहुत सारे वरदानों से विभूषित किया है और यदि हम उनकी गिनती शुरू करें तो वे हमारे लिए असंख्य होंगी। बहुधा अपने इन वरदानों के लिए हम ईश्वर को अपनी ओर से कृतज्ञता के भाव भी अर्पित करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं, तो वहीं ईश्वर से मिले इन उपहारों के कारण हम अपने को दूसरों से बढ़ चढ़कर बतलाने और दिखलाने लगते हैं। ईश्वर से मिले अनमोल उपहार हमारे लिए कई बार अहम और घमंड के कारण बन जाते हैं। संत पौलुस इस संदर्भ में हमें कहते हैं कि वे ईश्वर से मिले हुए वरदानों के लिए डींग ना मारें। इसके लिए उनके शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है, जिसकी टेस में वे अपने को ईश्वर से सदैव संयुक्त रखते हैं। श्रोताओं, हमारे जीवन में ईश्वरीय उपहारों के अलावे कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे लिए सदैव चिंता का कारण बनी रहती हैं। परिवारों में किसी का बीमार होना, कोई समस्या, कोई संकट की स्थिति या कोई कमी, जिसके कारण हम अपने को ईश्वर की ओर अभिमुख करते और उनके संग अपना संबंध बनाए रखते हैं। हमारे जीवन की वे दुर्बलताएं हमारे लिए उनकी कृपाओं को देखने और पहचानने के अवसर बनते हैं, जहां हम अपने को उनके सामने लाते और अपना सिर नवाते हुए मुक्ति हेतु उनसे विनय करते हैं। और यह हमारे लिए इस सच्चाई को घोषित करती है कि हम अपने में कुछ भी नहीं हैं। श्रोताओं, स्वयं यीशु को भी इस तरह के दर्द भरे अनुभव से होकर गुजरना पड़ा, जिसे हमने आज के सुसमाचार में सुना। उनके सगे संबंधी और नगर के लोगों ने उनकी आलोचना की और उन पर विश्वास नहीं किया। यह मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के लिए आत्म सम्मान में एक ठेस की स्थिति होती है, जिसके फलस्वरूप वे वहां चमत्कारों को नहीं करते हैं। यह उन्हें अपने पिता के संग और अधिक मजबूती में बने रहने का अवसर बनता है, जिसके कार्यों को पूरा करने हेतु वे धरती पर भेजे गए। मानवीय रीत ईश्वरीय रीत के एकदम भिन्न है और ईश्वर के द्वारा चुने और भेजे गए लोगों के रूप में हम उनकी इच्छा पूरी करने को कहे जाते हैं। आइए हम ईश्वर से निवेदन करें कि वे हमें तिरस्कार और अस्वीकार किए जाने की स्थिति में उनकी भावनाओं को अपने में अनुभव करने की शक्ति दे, जिससे हम उनके संग और अधिक गहराई से संयुक्त रह सकें, जो हमें अपने कार्यों को पूरा करने हेतु सामर्थ्य प्रदान करते हैं।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। इटली में कैथोलिकों के 50वें सामाजिक सप्ताह के समापन के लिए रविवार 7 जुलाई को संत पापा की त्रिएस्त्र यात्रा के अवसर पर समाचार पत्र इल पीकोलो ने संत पापा फ्रांसिस द्वारा एक अप्रकाशित पाठ प्रकाशित किया। लोकतंत्र के हृदय में शीर्षक से संत पापा के भाषणों और संदेशों के संकल्प का परिचय है। पुस्तक में इटली धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल मत्तेओ जुप्पी की प्रस्तुति है। संत पापा लिखते हैं, मुझे इस पाठ का परिचय देने में खुशी हो रही है कि समाचार पत्र इल पीकोलो और लाइब्रेरिया एडिट्रिचे वातिकाना सामाजिक सप्ताह के अवसर पर त्रिएस्त की मेरी यात्रा के संयोजन में पाठकों को पेश करते हैं। इस वर्ष का विषय है लोकतंत्र के हृदय में इतिहास और भविष्य के बीच भागीदारी। लोकतंत्र, जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं, प्राचीन ग्रीस में पैदा हुआ एक शब्द है जो लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग की जाने वाली शक्ति को इंगित करता है। सरकार का एक रूप, जहां एक ओर यह हाल के दशकों में विश्व स्तर पर फैल गया है, वहीं दूसरी ओर एक खतरनाक बीमारी लोकतांत्रिक संशयवाद के परिणामों को भुगतना प्रतीत होता है। लोकतंत्र में एक महान और निसंदेह मूल्य अंतर्निहित है, एक साथ होना। इस तथ्य का कि सरकार का अभ्यास एक ऐसे समुदाय के संदर्भ में होता है जो आम भलाई की कला में स्वतंत्र रूप से और धर्म निरपेक्ष रूप से खुद का सामना करता है। भागीदारी शब्द में हमें लोकतंत्र का प्रामाणिक अर्थ मिलता है। इसका अर्थ है लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्र में जाना। लोकतंत्र में भागीदारी की आवश्यकता होती है। इसमें स्वयं के प्रयास करने की मांग, टकराव का जोखिम उठाना, अपने आदर्शों, अपने कारणों को प्रश्न में लाना आवश्यक है। जोखिम वह उर्वर शक्ति है जिस पर स्वतंत्रता अंकुरित होती है। कई ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर लोकतांत्रिक रूप से हमें बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है। उधर रोमानिया के इयासी धर्म प्रांत के युवाओं को संबोधित एक खुले पत्र में संत पापा लिखते हैं, इयासी के युवाओं आशा के वाहक और पुल बनाने वाले युवक बने। दुनिया में अच्छाई और प्यार बोने के लिए अपने हर उपकरण का उपयोग करें। संत पापा के ये शब्द वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन द्वारा मई के मध्य में उन्हें दिए गए एक पत्र के जवाब में आए। उन्होंने 18 और 19 मई को इयासी धर्म प्रांत के युवा बैठक में भाग लिया था। रोमानिया के इयासी धर्म प्रांत द्वारा प्रकाशित अपने पत्र में संत पापा ने युवाओं को साहस और रचनात्मकता के साथ सोशल नेटवर्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसे मूल्यों को व्यक्त किया जो दोस्ती, शांति, जातीयताओं और संस्कृतियों के बीच संवाद, परिवार और ख्रिस्तीय मूल्यों का निर्माण करते हैं। संत पापा उन्हें अपने स्मार्टफोन के गुलाम बनने और वास्तविक जीवन की कीमत पर आभासी जीवन में फंसने के खिलाफ चेतावनी दी। अपनी दुनिया से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, उनकी कहानियां सुनो, अपने भाइयों और बहनों की आंखों में देखो। सच्चा धन दैनिक रूप से जीने वाले मानवीय रिश्तों में निहित है, सीधे और ईमानदार संपर्क में। अंत में संत पापा ने युवा कैथोलिकों को राष्ट्रीय युवा बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जो सितंबर में ब्रासोव जिले में आयोजित की जाएगी। उधर विश्वास के सिद्धांत के लिए बने विभाग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष विगनो को बहिष्कार करने की घोषणा की गई है, जो संत पापा फ्रांसिस या द्वितीय वाटिकन परिषद की वैधता को मान्यता नहीं देते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया कि सर्वोच्च संत पापा को मान्यता देने और उनके अधीन रहने से इनकार करने, अपने अधीन कलीसिया के सदस्यों के साथ संवाद को अस्वीकार करने और द्वितीय वाटिकन परिषद की वैधता और दंडाधिकारी के अधिकार को अस्वीकार करने वाले उनके सार्वजनिक बयानों को अच्छी तरह से जाना जाता है। दंड प्रक्रिया के समापन पर महाधर्माध्यक्ष कार्लो मरिया विगनो को विधर्म के आरक्षित अपराध का दोषी पाया गया। अंत में बयान में कहा गया, यह निर्णय 5 जुलाई 2024 को महाधर्माध्यक्ष विगनो को सूचित किया गया था और किर स्टार्मर को गुरुवार को हुए आम चुनावों में लेबर पार्टी की भारी जीत के बाद औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले भाषण में स्टार्मर ने सेवाभावी सरकार का वादा किया और कहा कि बदलाव का काम तुरंत शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स को निवर्तमान कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री श्री सुनक द्वारा सम्राट को अपना इस्तीफा सौंपने के कुछ समय बाद ही श्री स्टार्मर को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री के तौर पर अपने अंतिम भाषण में सुनक ने अपनी पार्टी की करारी हार के लिए देश से माफी मांगी। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि चुनाव के नतीजों ने कंजर्वेटिव शासन को खराब करने वाले अंदरूनी कलह, उथल पुथल और घोटालों के बाद यहां लोगों के बदलाव की इच्छा को रेखांकित किया। उधर भारत में कैथोलिक कलीसिया ने तुर्रा धर्म प्रांत के सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष जॉर्ज मामालासेरी के निधन की घोषणा की, जो मेघालय के तुर्रा धर्म प्रांत में अपनी परिवर्तनकारी भूमिका के लिए जाने जाते थे। धर्माध्यक्ष जॉर्ज का शुक्रवार सुबह तुर्रा के होली क्रॉस अस्पताल में गंभीर श्वसन समस्याओं के कारण निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। इनका जन्म 23 अप्रैल 1932 को केरल के कालाथूर में कुरियन और एलिजाबेथ मामालासेरी के घर में हुआ। 12 वर्ष की उम्र में वे अनाथ हो गए। उन्होंने पूनामल्ली के सेक्रेट हार्ट सेमिनरी में प्रवेश किया और 24 अप्रैल 1960 को धर्माध्यक्ष लुइस मतियास ने उनका पुरोहिताभिषेक किया। मिशनरी बनने की गहरी इच्छा से प्रेरित होकर शिलांग गुवाहाटी के महाधर्म प्रांत में गारो हिल्स के सुदूर और चुनौतीपूर्ण इलाकों में कदम रखा। 8 फरवरी 1979 को 46 वर्ष की आयु में तुर्रा का पहला धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया। इंजीनियर धर्माध्यक्ष के नाम से मशहूर धर्माध्यक्ष जॉर्ज को अपने व्यापक योगदान के लिए मेघालय सरकार द्वारा पा टोंगन संगमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।